भाइयों बहनों, बालक बालिकाओं एवं समस्त भक्त समुदाय, आज मैं आपको गीता के बारहवें अध्याय का पंद्रहवां श्लोक पढ़कर सुनाती हूँ। मुझे आशा है कि आज तक हमने गीता श्रीमद्भगवत गीता जी के जितने श्लोक पढ़े सुने उनका अर्थ जाना, उसमें से कुछ न कुछ हमारी झोली में अवश्य आ गया होगा और हम अवश्य गीता जी के उपदेशों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने का प्रयत्न भी करेंगे। श्लोक 15, यस्मान् नो विद्यते लोको लोकान् नो विद्यते चाया हर्ष अमर्ष भयो मुक्तो यासा चा ने पिया, जिससे कोई भी प्राणी क्षुब्ध नहीं होता और स्वयं भी किसी प्राणी से उद्विग्न नहीं होता, तथा जो हर्ष अमर्ष अमर्ष होता है ईर्ष्या भय और देव से मुझे प्रिय है। क्या बोलते भगवान? भगवान के सिवाय अन्य के सत्ता मानने से द्वेष पेशा भी आदि होते हैं। जब ये हम सोचते हैं आदमी है उसने मेरे साथ ऐसा किया है तो हमें ईर्ष्या होती है, कहीं भय आता है, कहीं उत्तेजना होती है, हलचल होती है। क्यों? क्योंकि हम भगवान को महान नहीं मानते हैं। जब हम ये मानेंगे कि भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं, जो उद्वेग देने वाला भी भगवान ही है, तो फिर हमारा मन शांत हो जाता है। भक्त की दृष्टि में एक भगवान के सिवाय अन्य कोई सत्ता है ही नहीं, फिर वह किससे उद्वेग ईर्ष्या भय आदि करे और क्यों करे? बहुत अच्छी बात है, भगवान ही ऐसा कुछ। तो फिर हम जो साक्षी बैर में द्वंद में फंसे हैं उसमें नहीं फंसेंगे। 16 श्लोक, अनापेक्षा सुखे दक्ष उदासीन भगत व्यथा सर्वावम परित्यागी यो मद भक्त संधि क्रिया। जो अपेक्षा आवश्यकता से रहित अपेक्षा से रहित बाल भीतर से पवित्र चतर उदासीन व्यथा से रहित और सभी आरम्भों का तथा मैंने कर्मों के आरम्भ का सार्थक लगी है वे मेरा भक्त मुझे प्रिय है। फिर से बताती हूँ कि कैसा भक्त मुझे अच्छा लगता है। भक्त का दर्शन स्पर्श भाषण दूसरों को शुद्ध करने वाला होता है, उसके शरीर का स्पर्श करने वाली हवा भी शुद्ध करने वाली होती है। इतनी ऐसी शुद्ध ज्ञान योगी महापुरुषों में भी होती है, तथापि भक्त में आरम्भ के ही सबके हित का भाव विशेष रूप से रहने के कारण उसमें विशेष शुद्धि होती है। भक्त ने करने योग्य काम कर लिया अर्थात भगवत प्राप्ति रूप से उद्देश्य पूरा कर लिए, इसलिए वह दक्ष है, चतुर है। भक्त लोग और भक्त भोग तथा संग्रह के लिए किए जाने वाले संपूर्ण कर्मों का स्वार्थ त्यागी होता है। भक्त ऐसा काम नहीं करता जिसमें कि भोग की लालसा हो और संचय करने की लालसा हो। उसके द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होते हैं। संसार में किंचित मात्र भी आसक्ति न रहने से भक्त का एक मात्र भगवान में स्वतः स्वाभाविक प्रेम होता है। संसार में चक्ते हैं क्या कह रहे हैं, किन किन मात्र भी आसक्ति न हो जरा। श्लोक 17, यो न हिंसति न दोषति न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मन में संजीव हो गया। भगवान कहते हैं जो न कभी हर्षित होता है न द्वेष करता है न शोक करता है न कामना करता है, जो अशुभ अशुभ कर्मों से ऊंचा उठा हुआ राग द्वेष सहित है वह भक्ति मनुष्य मुझे प्रिय है। हर्ष और शोक राग और द्वेष ये द्वंद है, भक्त में कोई भी द्वंद नहीं रहता, जो में द्वंद हो जाता है उसके संपूर्ण कर्म राग द्वेष से ही टूटते हैं। अशोक 18 और 19, समाचत्व समित्रेश तथा माना को मान लो शीतोष्ण सुख दुखेश समासिता तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्ट के ज्ञानिकेता श्रीमती भक्ति मान्य प्रियो नारायण जो शत्रु मित्र में समान अपमान सम है और शीत उष्ण शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता तथा सुख दुख मन बुद्धि की अनुकूलता प्रतिकूलता में सम है एवं अशक्ति रहित है और जो निंदा स्तुति को समान सुनने वाला मननशील जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निगाह होने न होने में संतुष्ट रहने के स्थान तथा शरीर में ममता अशक्ति से रहित स्थिर बुद्धि वाला है वह भक्तिमान मुझे प्रिय है। इन दो श्लोकों में भगवान ने वही स्थल दिया है जहाँ समता होने में कठिनता आती है। यदि मैं समता हो जाए तो अन्य जगह समता होने में कठिनता नहीं प्रतीत होगी। अपने प्रक्रिया से न पढ़ना ही समता है। यदि भक्त की दृष्टि में भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता होती ही नहीं तथापि दूसरे लोगों की दृष्टि में वह शत्रु और मित्र में समभाव वाला दिखता है। शत्रुता मित्रता का ज्ञान होने पर भी वह सम रहता है और सब प्रकार की अनुकूलता और प्रतिकूलता में सम रहता है। उसका ना तो अनुकूलता में राग होता है न प्रतिकूलता में द्वेष। श्लोक 20 ये तो धर्म यूथोक्तमुपास श्रद्धा नाम भक्तास्ते में प्रिया। परन्तु जो मैं श्रद्धा रखने वाले और मेरे कायन हुए भक्ति इस धन में अमृत का जैसा कहा है वैसा ही भगवंती सेवन करते हैं जो मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान ने सिद्ध भक्तों के 39 लक्षणों के 5 प्रकरण दिए हैं। मतलब जो सिद्ध भक्त हैं उनमें कितने लक्षण है 39 वो 5 भागों में बांटे हैं। 13वें 14वें श्लोकों का पहला प्रकरण है। 15वें श्लोक का दूसरा प्रकरण है। 16वें वर्ष श्लोक का तीसरा प्रकरण है। 17वें श्लोक का चौथा 18वें 19वें श्लोक का 5वां प्रत्येक प्रकरण के लक्षण धर्म निहित है। साधक पर जिस प्रकरण के लक्षण को आदर्श मानकर साधन करता है उसी के लिए वह धर्म निहित है। ऐसे साधक और भगवान के अत्यंत प्रिय होते हैं। श्रद्धा साधक में होती है श्रद्धाना सिद्ध में श्रद्धा नहीं होती प्रति तो अनुभव होता है क्योंकि उस अनुभव में परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं सब कुछ परमात्मा ही है। फिर वह श्रद्धा क्या करे साधक की दृष्टि में दूसरी सत्ता रहती है इसलिए वह श्रद्धा पूर्वक उपासना करता है। दूसरी सत्ता की मान्यता रहती हुई साधक भगवान के प्रायण रहता है और भगवान के सिवाय दूसरा कोई उसका प्रेमास्पद नहीं होता इसलिए वे भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। जैसे राधा कृष्ण का प्रसंग यहाँ उल्लेखनीय है कि राधा जैसा भक्त हो तो कृष्ण भगवान ने अपने नाम से पहले राधा का नाम जोड़ दिया। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीतासु सोपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योग नाम द्वादशो अध्याय। अब मैं आपको निषाद वाणी में से कुछ और प्रसंग सुनाना चाहती हूँ। कहते हैं जाल दो प्रकार का है एक संसारी जाल और दूसरा शास्त्रीय। संसार के में वो रूपी दल दल में फंस जाना संसारी जाल है और शास्त्रों के संप्रदायों के द्वैत और द्वैत आदि अनेक मत मतांतरों में उलझ जाना शास्त्रीय जाल है। शास्त्रीय मतलब शास्त्र से संबंधित है। संसारी जाल तो जो चंताक सूत के समान है और शास्त्रीय जाल जो सोमन सूत के समान है। कहते हैं शास्त्रीय जाल को काटना आसान है वो एक छंटार के बराबर है लेकिन ये जो शास्त्रों का जाल है द्वैत कैसा है अद्वैत क्या है ये संप्रदाय ऐसा है वो ऐसा है ये सब इसमें उलझना जो है ये बहुत बड़ा जाल है। सोमन सूत के समान दोनों जालों में बुद्धि एक निश्चय वाली होनी चाहिए और परमात्मा में कुछ बुद्धि अचल होनी चाहिए कि हमें तो परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए, चाहे जो हो जाए, चाहे जहाज कैसा है, जो कुछ भी है, हमें तो क्या करना है, केवल भगवान की प्राप्ति करनी है। तो हम इस दोनों प्रकार के जाल से छूट सकते हैं। अब मैं आपको एक अनुभूति की ओर ले जाती हूँ। प्रभु तेरी कृपा मुझे कहाँ ले आई, यहाँ न दिन है न रात, न सुबह है न शाम, प्रभु तेरी कृपा मुझे यहाँ ले आई। प्रभु तेरी कृपा मुझे कहाँ ले आई, जहाँ न काम है न क्रोध, जहाँ न मोह है ना ही लोभ, प्रभु तेरी कृपा मुझे यहाँ ले आई। प्रभु तेरी कृपा मुझे कहाँ ले आई, जहाँ न मद है ना ही मत्सर, जहाँ न अहंकार है और ना ही गर्व, प्रभु तेरी कृपा मुझे यहाँ ले आई। प्रभु तेरी कृपा मुझे कहाँ ले आई, जहाँ न मंदिर है ना ही मस्जिद, जहाँ न गिरजा घर है ना ही गोपा, प्रभु तेरी कृपा मुझे यहाँ ले आई। प्रभु तेरी कृपा मुझे कहाँ ले आई, जहाँ न मैं हूँ और न ही और कोई, जहाँ केवल तू ही तू है न ही है और कोई, प्रभु तेरी कृपा मुझे यहाँ ले आई। प्रभु तेरी कृपा मुझे कहाँ ले आई, जहाँ न अपना है न ही पराया, वसुधा कुटुम्ब है गम ही पिता, प्रभु तेरी कृपा मुझे यहाँ ले आई। जहाँ ब्रह्म ही तू मेरा सब कुछ है, प्रभु तेरी कृपा मुझे यहाँ ले आए। गीता में अब मैं कुछ और एक दो संस्मरण आपको सुनाती हूँ। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का है। श्रीमान देवी तीर्थ में 24 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव प्रतिवर्ष की भांति मनाया जा रहा है। 24 अगस्त 2019 का है ये। इस महोत्सव के लिए सब प्रकार की तैयारियां हो रही हैं। 24 अगस्त को प्रातः सत्संग भवन में झूला उत्सव आरम्भ हुआ। महामंत्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे का महामंत्र आरम्भ हुआ और संध्याकालीन आरती तक चलता रहा। तत्पश्चात शहर से आए भक्तजनों इतने में पुरुषों ने संकीर्तन किया। 11:45 पर श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध से श्री कृष्ण जन्म पढ़कर पाठ सन्यासी कुमार जी द्वारा हुआ। ठीक 12 बजे शंख ध्वनि के साथ मध्यकालीन अंधेरी रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का प्रकट्य हुआ। यदा यदा हि धर्म से दलाने भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मान सेजामहम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान के शाश्वत सनातन वाणी को पढ़कर सुनाया गया। बाल गोपाल को नहलाकर सुंदर वस्त्र पहनाकर उनके झोले में विराजमान कर दिया। सभी भक्तजन पुरुष और महिलाएं बाल गीत तथा मंदिर स्टाफ ने बारी बारी आकर झूला झुलाया, नमस्कार करके प्रसाद ग्रहण करके प्रभु के पवित्र नाम को उच्चारण करते हुए सब अपने अपने घरों की ओर गए। जब जब हुई धर्म की हानि, बाण यश अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीड़ा, भगवान का अवतार होता है हमारे इस पावन वसुंधरा पर। ब्रह्मांड में पृथ्वी लोक एक ऐसा पावन नक्षत्र है जहाँ 5 तत्वों का एक साथ मेल हुआ है। ये 5 तत्व हैं पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश, उनको खाई गले में सुई कहा कहते हैं। इन 5 तत्वों से इस पृथ्वी पर 84 लाख योनियों की संख्या को माना गया है और ये योनियां मुख्य 4 भागों में विभाजित है। प्रथम है पिंडज, जो पिंड मतलब आकार से उत्पन्न होते हैं, जैसे मनुष्य योनि तथा पशु योनि, गाय भैंस आदि। दूसरा है अंडे, जो अंडे से पैदा होते हैं जैसे पक्षी चिड़िया तोता मुर्गी आदि। तीसरी है जो पसीने से उत्सेदक, जो पसीने से पैदा होते हैं जैसे जुए आदि। उद्भिज, जो मिट्टी से पैदा होते हैं केंचुए आदि। इन योनियों में सबसे उत्तम योनि मानव योनि है। वैदिक साहित्य में प्रसंग मिलता है कि ईश्वर ने सृष्टि को अपने खेल के लिए बनाया है। सृष्टि से पूर्व केवल एक ब्रह्म ही ब्रह्म था। ब्रह्म को सगुण साकार रूप लेने के लिए ईश्वर ने पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पांच तत्वों का निर्माण किया और अपने जैसा पुतला बनाने के लिए प्रयत्नशील हुए। प्रयत्न करते करते 83 लाख योनियां बना डाली, पर ईश्वर को संतोष हुआ नहीं क्योंकि प्रत्येक योनि में विवेक की कमी रह गई। अब ईश्वर ने ठीक अपने जैसा पुतला बनाया और उसके सिर के सीमेंट प्रदेश से स्वयं भीतर घुस गए। ऐसा करके उनके सामने मानव प्रकट हुआ तो ईश्वर को संतोष हो गया और ईश्वर ने मन ही मन कहा होगा, आखिर एटलीस्ट मैंने मनुष्य बना ही दिया। मनुष्य ने अपने सब रंग रूप स्वभाव देल कर उसे पृथ्वी पर भेजा और कहा, तू पृथ्वी का सर्वोत्तम जीव होगा, इसलिए तुझे सदैव सद्विचार ही करना होगा। कितनी अच्छी कथा है, कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया है। ये कथा हमारे ग्रंथों में मिलती है, अपने शब्दों में मिलती है। तो किसी एक जब हमें कहा तो सर्वोत्तम होगा, सबसे ऊंची योनि का होगा मनुष्य योनि, और उसके ऊपर अगर एटलीस्ट क्या विवेक, क्या ठीक है क्या गलत, इसका विचार भी अगर मनुष्य में होगा तो वो महामानव बन जाएगा। पृथ्वी के समस्त काल को 4 युगों में बांटा गया है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। प्रत्येक युग में जब मानव द्वारा इस वसुंधरा को नायक बनाने का प्रयत्न किया गया तभी ईश्वर मानव शरीर धारण कर पृथ्वी पर अवतार लेते आए हैं और दुजनों को मां को का भार बहन कर सज्जनों की रक्षा करके धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का अवतार द्वापर युग में हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी कांस तथा दुष्ट राजाओं को मारकर तथा कौरवों की दुष्ट नीति का दमन महाभारत का युद्ध करवा करके किया। अवतार तभी आते हैं जब धर्म की हानि होती है और दुष्ट अनीति बरतते हैं। भगवान कृष्ण का युग भी विषाद का युग था। आज कलयुग में विषाद ही विषाद है। अधिकतर लोग विषाद में अथवा डिप्रेशन में ही जीते हैं। उन्हें जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहा है। इस विषाद को समाप्त करने के लिए श्रीमद् भगवत गीता जो भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से स्वयं स्फुरित हुई है का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। गीता की शिक्षाओं का पालन जीवन में अवश्य होना ही चाहिए। भगवान ने मनुष्य को त्रिविध मार्ग प्रदान किया है। ये त्रिविध मार्ग है भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। भक्ति योग हमें चाहिए कि हम अपने दैनिक जीवन में प्रभु को प्रथम स्थान दें, उनसे प्रेम करें, उनके आदर्शों का पालन करें, अतः जीवन का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति ही बनाए। मेरी ही गुण ग्राही ज्ञान लोग, ज्ञान लोग में भगवान कहते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं। आत्मा अगर अमर है, मरना तो जीवन वस्त्रों को उतार कर फेंकने का समान है। पुराना शरीर छोड़कर जो कर्मानुसार नया शरीर धारण करता है, निष्काम कर दो, कर्म करो पर फल की इच्छा मत करो। कर्मण्यवादी कहते माँ फलेश उपदार्चना, अतः कर्म करो अवश्य पर इच्छाओं से मुक्त होकर। दूसरों का भला करना पर बदले में कुछ ना इच्छा करना ही कर्म योग है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि भगवान द्वारा प्रदत्त इस त्रिविध मार्ग का चयन करे, पावन जीवन जिए। हमारे जीवन में प्रभु भक्ति, आत्मज्ञान तथा निष्काम कर्म भी होना चाहिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का यही तो अर्थ है। महाभारत में कहा गया है एक ही विषय में एक ही वस्तु में दो भाव का लेना द्वंद्व है, परंतु जहाँ विषय अलग अलग होते हैं वहाँ द्वंद्व नहीं होता। जैसे प्रकृति और पुरुष, जड़ और चेतन, ऐसे संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाना द्वंद्व नहीं है, परंतु केवल संसार में ही दो भाव, राग द्वेष, हर्ष, सुख दुख आदि हो जाए तो द्वंद्व हो जाता है। इसी द्वंद्व में विषय फंसता है। इन्हीं शब्दों के साथ गीता माँ जय माता।